श्रीमद् भागवतम में सातवें स्कंद को हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। अब दूसरे अध्याय पर चर्चा होगी, इसके एक श्लोक को कहेंगे। कृपया दोहराइए। तावद्यात भुवं यूयं ब्रह्म क्षत्र समेधितां सूदयध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः तावद्यात भुवं यूयं ब्रह्म क्षत्र समेधितां सूदयध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः तावद्यात भुवं यूयं ब्रह्म क्षत्र समेधितां सूदयध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः। जब तक मैं विष्णु को मारने में व्यस्त हूं या जाओ भुवम पृथ्वी लोक में यूयम तुम सब ब्रह्म क्षत्र ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का समेधिताम कर्मों ब्राह्मण संस्कृति तथा वैदिक शासन द्वारा संपन्न बने हुए सूदयध्वं विनष्ट कर दो। तपह तपस्या करने वालों को यज्ञ यज्ञ स्वाध्याय वैदिक ज्ञान का अध्ययन व्रत अनुष्ठान संबंधी प्रतिज्ञाएं दानिनः तथा दान देने वालों का। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब तक मैं भगवान विष्णु को मारने के कार्य में लगा हूं तब तक तुम लोग पृथ्वी लोक में जाओ, जो ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है। ये लोग तपस्या यज्ञ वैदिक अध्ययन अनुष्ठानिक व्रत तथा दान में लगे रहते हैं, ऐसे सारे लोगों को जाकर विनष्ट कर दो। तात्पर्य, हिरण्यकश्यपु का मुख्य उद्देश्य देवताओं को विचलित करना था। उसने सर्वप्रथम भगवान विष्णु को मार डालने की योजना बनाई, जिससे विष्णु की मृत्यु होने पर सारे देवता स्वतः निर्बल होकर मर जाएंगे। उसकी दूसरी योजना पृथ्वीवासियों को सताने की थी। पृथ्वीवासियों तथा अन्य लोकों की शांति तथा समृद्धि ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा बनाए रखी जाती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। प्रकृति के तीन गुणों तथा उनके नियत कर्म के अनुसार मानव समाज के चार वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा की गई है। सभी ग्रहों में भिन्न भिन्न प्रकार के वासी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मनुष्य द्वारा निवसित पृथ्वी लोक के प्रसंग में वे संस्तुत करते हैं कि समाज चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में विभाजित किया जाए। इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व ऐसा जाना जाता है कि यह पृथ्वी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा व्यवस्थित होती थी। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह शमः शांति, दमः आत्मसंयम, तितिक्षा सहिष्णुता, सत्यम सच्चाई, शौचम स्वच्छता तथा आर्जवम सरलता का संवर्धन करे, और तब क्षत्रिय राजाओं को मंत्रणा दे कि देश या लोक पर किस तरह शासन किया जाए। ब्राह्मणों के उपदेशों का पालन करते हुए क्षत्रियों को चाहिए कि वे जनता को तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय तथा वैदिक अनुष्ठान में दृढ़ बनाने के लिए प्रवृत्त करें। उन्हें ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा मंदिरों को दान देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ब्राह्मण संस्कृति का यह दैवी विधान है। लोगों की प्रवृत्ति यज्ञ संपन्न करने की ओर इसलिए होती है क्योंकि यदि यज्ञ न किए जाएं तो वर्षा अपर्याप्त होगी, यज्ञात भवति पर्जन्यः, जिससे कृषि कर्म में बाधा उपस्थित होगी, पर्जन्यात् अन्न संभवः। अतः ब्राह्मण संस्कृति का सूत्रपात करके क्षत्रिय सरकार को चाहिए कि लोगों को यज्ञ करने, वेदों को पढ़ने तथा दान देने की प्रति प्रवृत्त करें। इस प्रकार लोगों की आवश्यकताएं सरलता से पूर्ण हो सकेंगी और समाज में उपद्रव नहीं होंगे। इस संबंध में भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैदत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। सारे देवता जीवन की विविध आवश्यकताओं का भार संभालने के कारण यज्ञ संपन्न होने से तुष्ट होकर मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, किंतु जो व्यक्ति इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोग करता है वह निश्चय ही चोर है। देवतागण वैद इच्छा पूर्ति अभिकर्ता हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के प्रतिनिधि रूप में कार्य करते हैं। अतएव नियत यज्ञ संपन्न करके उन्हें प्रसन्न किया जाना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न यज्ञ बताए गए हैं, किंतु वे सारे यज्ञ अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही समर्पित होते हैं। जो पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता उसके लिए संस्तुति की जाती है कि वे देवताओं के लिए यज्ञ करे। वेदों में संबंध व्यक्तियों के भिन्न भिन्न भौतिक गुणों के अनुसार विभिन्न यज्ञों की संस्तुति की गई है। विभिन्न देवताओं की पूजा का आधार भी संबंधित व्यक्तियों के गुणों के अनुसार है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को प्रकृति की विभत्स स्वरूपा देवी काली की पूजा की संस्तुति की जाती है। इस देवी के समक्ष पशुओं की बलि दी जाती है, किंतु सतोगुणियों के लिए विष्णु पूजा की संस्तुत की गई है। अंततः सारे यज्ञ क्रमशः दिव्य पद तक उठने के निमित्त किए जाते हैं। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है। किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मानव समाज की सारी आवश्यकताएं भगवान के अभिकर्ता देवताओं द्वारा पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के समस्त खाद्य पदार्थों के विषय में विचार करें। इनमें अन्न, फल, तरकारियां, दूध तथा चीनी सम्मिलित हैं, जो शाकाहारियों के लिए हैं। इनमें मांसाहारियों के लिए भी खाद्य पदार्थ होते हैं यथा मांस, किंतु इनमें से किसी का भी निर्माण मनुष्य द्वारा नहीं हो सकता। पुनः दूसरा उदाहरण ऊष्मा, प्रकाश, जल तथा वायु का ले लें, जो जीवन के लिए आवश्यक है। और इनमें से किसी का भी निर्वाण मानव समाज द्वारा नहीं हो सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर सूर्य प्रकाश हो सकता है, न चांदनी, न वर्षा, न मंद समीर, जिनके अभाव में कोई जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारे जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर निर्भर हैं। यहां तक कि अपने निर्माण कार्यों के लिए भी हमें अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातुएं, गंधक, पारा, मैंगनीज इत्यादि, और ये सब भगवान के द्वारा इस उद्देश्य से प्रदान की जाती हैं कि हम इनका उचित उपयोग करके अपने को स्वस्थ रखकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकें, जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात संसार में जीवन संघर्ष से मोक्ष है। यह जीवन लक्ष्य यज्ञों को संपन्न करके प्राप्त किया जाता है। यदि हम मनुष्य जीवन के प्रयोजन को भूल जाते हैं और मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान के अभिकर्ताओं से आपूर्ति ग्रहण करते हैं और संसार में अधिकाधिक फंसते जाते हैं जो सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर बन जाते हैं और हमें प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। निपट भौतिकवादी चोरों का कोई परम जीवन लक्ष्य नहीं होता। वे इंद्रिय तृप्ति द्वारा निर्देशित होते हैं, उन्हें यज्ञों को संपन्न करने का कोई ज्ञान नहीं होता, किंतु भगवान चैतन्य ने यज्ञ की सरलतम विधि का सूत्रपात किया है, जो संकीर्तन यज्ञ है, और जिसे विश्व का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार कर लेता है संपन्न कर सकता है। हिरण्यकश्यपु ने पृथ्वी के निवासियों को मार डालने की योजना बनाई थी, जिससे यज्ञ बंद हो जाएं, और जब यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का स्वतः वध हो जाएगा तो सारे देवता विचलित होकर स्वतः मर जाएंगे। ये हिरण्यकश्यपु की आसुरी योजनाएं थी, जो ऐसे कार्यों में दक्ष था। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुखदायकम्। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वशास्त्रादिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला, सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा, सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो, कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते, सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगे मद्गुरो मन्महाधना, मन निस्तार कमद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाइन अति नीचो चतह कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम नारित कंठ योस्फुरा। हरे कृष्ण। तो इस स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित महाराज का प्रश्न हुआ कि क्या भगवान पक्षपात करते हैं, भगवान तो समान हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने देवताओं की तरफ से कार्य किया, तो कृपया इसको समझाइए। और उसको समझाने के लिए शुकदेव गोस्वामी पहले तो सिद्धांत की दृष्टि से उनको समझाते हैं कि कैसे भगवान सबके लिए समान हैं, निर्गुण हैं, भगवान कभी भौतिक शरीर धारण नहीं करते, इसीलिए उन्हें इस जीवन के, इस भौतिक जगत के द्वेष, निंदा, सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, सबके लिए समान हैं। और फिर उस चीज को बताने के लिए वो एक इतिहास को कहने लगे कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने जब प्रश्न किया नारद मुनि से कि कैसे ये शिशुपाल जो बचपन से जब से बोल भी नहीं पाता था, दम घोष सुतम पापम आरभ्य कल भाषणात्, जब तोतला कर बोलता था बोली तब से कृष्ण की निंदा कर रहा है, कैसे ये मुक्त हो गया, नरक क्यों नहीं गया, इसके शरीर में कोढ़ क्यों नहीं हो गया। तो उसको बताने के लिए फिर नारद मुनि इस कथा को कहना प्रारंभ करते हैं। शुरुआत में नारद मुनि समझाते हैं कैसे भगवान समान हैं, और फिर कहते कहते उन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र के इतिहास को कह दिया संक्षेप में कि तीन जन्म हुए, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, और हिरण्यकश्यपु को कहते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया, तब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए। तो फिर पिछले अध्याय के अंत में प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज ने कि ऐसा कैसे हुआ कि अपने ही पुत्र के प्रति इतना वो द्वेषी हो गया, इतना शत्रुत्व का भाव हो गया कि अपने ही पुत्र को मारने लगा। तो तब उस कथा को अब वो आगे कह रहे हैं। तो इस अध्याय में हिरण्यकश्यपु का वर्णन आ रहा है, असुर राज हिरण्यकश्यपु। तो कैसे हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के प्रति द्वेष उत्पन्न किया, क्यों उत्पन्न हुआ, तो इसको कहने का प्रारंभ वो हिरण्याक्ष के वध से कर रहे हैं। तो नारद मुनि कहने लगे कि जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, तीसरे स्कंद में हम लोग पढ़ चुके हैं हिरण्याक्ष के वध की कथा, तो हिरण्याक्ष का वध हो गया तो बहुत क्रोध में आया हिरण्यकश्यपु, इधर उधर घूमने लगा, इतना क्रोधित हो गया अपने भाई की मृत्यु से कि उसने सभी दानवों को बुलाया और उनको कहने लगा कि देखो वैसे तो भगवान सबके लिए समान है। इस अध्याय में हिरण्यकश्यपु के ज्ञान का वर्णन है, कितना ज्ञानी था वो। दरअसल जो ज्ञान उसको था अच्छे अच्छे भक्तों को भी नहीं होता है, जिस तरह का ज्ञान वो प्रकट करने वाला है, लेकिन फिर भी असुर, फिर भी विरोधी। तो उसने कहा कि वैसे तो भगवान असुरों के लिए और सुरों के लिए, देवताओं के लिए समान हैं, पक्षपात नहीं करते हैं भगवान, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके वो देवताओं की तरफ हो गए हैं। देखिए, जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया यही प्रश्न कि क्या भगवान पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, भगवान तो नहीं करते हैं लेकिन फिर क्यों इंद्र का साथ दिया, तो उनके मन में ये शंका नहीं थी कि क्या भगवान देवताओं की तरफ आ गए हैं। लेकिन जब हिरण्यकश्यपु इसी बात को कह रहा है कि हालांकि भगवान समान है दोनों के लिए, लेकिन अब वो देवताओं की तरफ हो गए, तो परीक्षित महाराज भक्त हैं इसीलिए उन्हें शंका नहीं थी कि, या उन्हें ये विश्वास नहीं था कि भगवान पक्षपात करते हैं, लेकिन असुर होने के नाते हिरण्यकश्यप कह रहे हैं कि भगवान ने पक्षपात किया, उनकी तरफ हो गए हैं, वराह का रूप लिया है, मेरे इतने प्रिय भाई को मार दिया है, तो अब मैं विष्णु का वध करूंगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि दानवों में, दैत्यों में या असुरों में और सुरों में ये अंतर है देवताओं में कि दोनों जानते हैं भगवान समान हैं, लेकिन जो देवता होते हैं, जो सुर होते हैं, वो भगवान के आदेश का पालन करते हैं, जो असुर होते हैं वो भगवान को मारने का प्रयास करते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप। तो जो देवता है वो भगवान के आदेश को स्वीकार करते हैं। अगर आप जानते हो कि भगवान सबके लिए समान है, वो परम भगवान है, तो जो उनका आदेश है उसको स्वीकार करना, उनको भक्त कहा जाता है, देवता कहा जाता है। और जो आदेश को स्वीकार नहीं करते वो असुर, हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं भगवान को, मैं विष्णु को मारूंगा, और जब तक मैं इस कार्य में लगा हूं, जैसे हम लोग इस श्लोक में देख रहे हैं कि उसको बहुत गुस्सा था, बहुत क्रोध में था, और वो कहना चाहता था कि बस अभी मैं मार कर ला रहा हूं, तो मेरे इतने प्रिय भाई को मार दिया, तो मैं विष्णु का सर अलग कर दूंगा उसके धड़ से, अपने इस त्रिशूल से। त्रिशूल को हाथ में लेकर उसने कहा कि इस त्रिशूल से विष्णु का सर अलग कर दूंगा, और जो खून निकलेगा तो उस खून को मैं अपने भाई हिरण्याक्ष के पास लेके जाऊंगा, क्योंकि तब हिरण्याक्ष को शांति मिलेगी। तो जैसे ऐसे कई बार कहा जाता है ना, भीम ने भी प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन की छाती को फाड़कर उसका लहू पीऊंगा तब शांति होगी। ऐसे पिया नहीं था, लेकिन ऐसे उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। तो हिरण्यकश्यप भी कहने लगे कि उनके सर को काट दूंगा। और प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं असुर केवल भगवान को मारना चाहते हैं, जानते नहीं है कि भगवान को कभी मार नहीं सकते। और ये जो रक्त की बात कर रहे हैं, तो जितने भी असुर होते हैं वो जब भगवान की स्मरण बड़ा तीव्र करते हैं, क्योंकि भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान से शत्रुता रखते हैं, तो बड़ा स्मरण करते हैं भगवान का, तो इस स्मरण के कारण उनको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है, भगवान के सायुज्य अर्थात भगवान के रूप में लीन हो जाना। और तब प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान जो हार पहनते हैं वो लाल रंग का होता है, रक्त के रंग का। तो इसीलिए ये जो हिरण्यकश्यप कह रहा है कि उनको मारकर मैं रक्त को प्राप्त करूंगा, तो दरअसल वो लोग भगवान के हार को प्राप्त करते हैं, बस इतना ही, ज्यादा से ज्यादा उतना, क्योंकि भगवान का स्मरण बहुत तीव्र होता है, इसीलिए सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप कहने लगा कि मैं सार भगवान को मार दूंगा, और तुम लोग जाओ, सब जगह जाओ, और जितने भी लोग वैदिक धर्म का, जैसे श्लोक में हम लोग सुन रहे हैं कि वैदिक धर्म का पालन कर रहे हैं, उन सबको मार डालो। ये जो विष्णु है ये पेड़ की जड़ के समान है, अगर विष्णु को मैंने मार दिया तो ये सारे जो वृक्ष, देवता इत्यादि, ये सब अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से आश्रित हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि दरअसल हिरण्यकश्यप देवताओं का गुणगान कर रहा था कि देवता पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित है, विष्णु पर, तो ये सही है, वो सब विष्णु पर आश्रित है। तो विष्णु को मार दूंगा और अपने आप ये सारा पेड़ सूख जाएगा, तो तुम लोग जाओ। और जहां जहां हिरण्यकश्यप कहता है यत्र यत्र द्विज गावो, जहां जहां ब्राह्मण हैं, जहां गायों का संरक्षण हो रहा है, द्विज गायो वेद, वेद का पालन, वेद का पठन हो रहा है, वर्णाश्रम क्रिया, जहां जहां वर्णाश्रम का पालन हो रहा है, इन सब को समाप्त कर दो। तो देखो, देखिए जहां ये चीजें हैं वहां भगवान की प्रसन्नता है, वहां भगवान विष्णु रहते हैं, इसीलिए उनको समाप्त कर दो। यत्र यत्र द्विज गावो, द्विज यानी ब्राह्मण जहां जहां है, यत्र यत्र, और जहां गायों का संरक्षण हो रहा है। तो वैदिक सभ्यता ये ब्राह्मणों को, गायों को संरक्षण प्रदान करने के लिए है। तो ऐसे वो कहने लगा कि उन सबको मार दो, और साथ साथ उसने ये भी कहा कि जितने भी वृक्ष हैं उनको भी काट दो, वृक्षों को भी काट डालो। वैदिक सभ्यता में जो वृक्ष अच्छे फल देते हैं उनको कभी काटा नहीं जाता, या वैसे भी वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जहां पर गायें हैं उनका संरक्षण होना चाहिए, ब्राह्मणों का संरक्षण होना चाहिए, वेद अध्ययन, वर्णाश्रम पालन और वृक्षों को भी काटना नहीं चाहिए। और फिर खुद ही एक प्रश्न पूछते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि अगर वृक्षों को काटेंगे नहीं तो हम जो ये पेपर पे छाप रहे हैं ग्रंथ, तो ये कहां से बनेंगे? कोई प्रश्न कर सकता है ना कि आप बोलते हो पेड़ नहीं काटो और फिर इतने सारे ग्रंथ छापकर हजारों लाखों ग्रंथ बांट रहे हो, तो पेपर कहां से आएगा? वो तो वहीं से आता है ना, वृक्षों से। तो प्रभुपाद खुद ही प्रश्न करते हैं और खुद ही उत्तर देते हैं कि हाँ, कोई प्रश्न कर सकता है कि पेड़ों को काटेंगे नहीं तो पेपर कहां से आएगा। तो वो कहते हैं, बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि पेड़ों को केवल इस्कॉन के ग्रंथ छापने के लिए काटा जा सकता है और कुछ नहीं। स्पष्ट लिखते हैं कि अगर पेड़ों को काटना है तो इस्कॉन के ग्रंथ छापने के लिए। क्यों? क्योंकि हम ये ग्रंथ भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए छाप रहे हैं। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र लोको यम कर्म बंधनः, कि अगर कोई कर्म करना है तो मेरी संतुष्टि के लिए किया जा सकता है। तो हम लोग भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, इसीलिए पेड़ों को केवल इस्कॉन के ग्रंथ छापने के लिए काटना चाहिए, अन्यथा नहीं काटना चाहिए। बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए नहीं काटना चाहिए, सड़कें बनाने के लिए नहीं काटना चाहिए, लेकिन केवल इस्कॉन के ग्रंथ छापने के लिए काट सकते हैं। तो ऐसे हिरण्यकश्यपु ने कहा कि आप सब जाओ, सब जगह उत्पात करो, ब्राह्मणों को मारो, गायों को मारो, पेड़ों को काटो, यज्ञ बंद कराओ, कोई पालन नहीं हो वर्णाश्रम का। तो ऐसे उसने सब कहा और फिर वो उस स्थान पर गया जहां हिरण्याक्ष का शव पड़ा हुआ था। और हिरण्याक्ष के शव पर हिरण्याक्ष के पुत्र, हिरण्याक्ष की पत्नी ऋषभानु और हिरण्याक्ष की माता दीति, वो सब रो रही थी वहां पर, तो बड़ा विलाप कर रही थी। तो हिरण्यकश्यपु वहां गया, उसको भी दुख था अपने भाई का, इसीलिए तो इतना क्रोध दिखा रहा था। लेकिन जब वहां गया तो सांत्वना देने लगा। और क्या कहते हैं हिरण्यकश्यपु भागवत के इस अध्याय में, श्री हिरण्यकश्यपु उवाच लिखा हुआ है। जब हिरण्यकश्यपु बोलने लगे तो श्री हिरण्यकश्यपु उवाच। अब श्री हिरण्यकश्यपु क्यों लिखा है? अब श्री भगवान उवाच ठीक है, श्री ब्रह्मा उवाच ठीक है, श्री नारद उवाच ठीक है, अब अच्छा प्रवचन दे रहे, श्री हिरण्यकश्यपु उवाच क्यों? क्योंकि जो कहने जा रहा है हिरण्यकश्यपु वो सही चीज है, वो शुभ चीज है जीव के लिए, वो सच्चा आनंद लाने वाली चीज है। भले कह रहा है हिरण्यकश्यपु, लेकिन जो कहने जा रहा है वो सही चीज है। तो श्री हिरण्यकश्यपु उवाच, हिरण्यकश्यपु ने कहा। तो जब उसने देखा कि सब रो रहे हैं तो उसने कहा कि रो मत, एक एक योद्धा के लिए युद्ध में अपने शत्रु के हाथों मारा जाना ये तो बड़ा प्रशंसनीय कार्य है, उसके लिए तो बहुत ऊंचा स्थान मिल जाता है, तो रोना नहीं चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि मेरा भाई युद्ध करते हुए शत्रु से मारा गया है, तो ये तो गर्व की बात है, इसलिए रो नहीं। और फिर वो कहता है कि ये जिसके लिए रो रहे हो आप, दरअसल वो आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं है। बहुत सुंदर ज्ञान भगवद गीता में जो भगवान ने ज्ञान दिया वही ज्ञान वो दे रहा है। वो कहता है आत्मा कभी मरती नहीं है। जिस तरह किसी एक भोजन के स्थान में या पानी पीने के स्थान में कुछ लोग एक साथ आते हैं, थोड़ा समय साथ में रहते हैं, फिर अपने अपने स्थान चले जाते हैं, ऐसे ही आत्मा है। हम सब थोड़ा समय के लिए एक साथ आते हैं, शरीर धारण करते हैं और फिर वापस चले जाते, अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए रोने का कोई कारण नहीं है, रोना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा सदैव अमर है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, केवल अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है जब जीव, तब वो कष्टों में आता है। देखिए कितना सुंदर ज्ञान है, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग, और खुद क्या करने वाला है, विष्णु को मारूंगा। ये क्या है, ये स्वतंत्रता का सदुपयोग है? लेकिन वो कह रहा है कि जब जीव, जब आत्मा स्वतंत्रता का, जो भगवान के द्वारा स्वतंत्रता दी गई है, उसका दुरुपयोग करता है, उसको अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। और फिर जब वो प्रकृति के नियमों के अनुसार किसी शरीर को धारण कर लेता है, मोह में पड़ जाता है, मोह के कारण वो ये सोचता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे शत्रु हैं, खुद ही कह रहा है हिरण्यकशिपु कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब ये केवल मोह मोह है। आत्मा ये जब शरीर लेता है, थोड़े समय के लिए रहता है और चला जाता है, इसलिए इस मोह में मत पड़ो। इस हिरण्याक्ष के लिए आप रो नहीं, क्योंकि ये जो जीव है ये मरता नहीं, बारंबार जन्म लेता है। मोह के कारण उसको संसार चक्र में फंसना पड़ता है। अगर ये ज्ञान के पहले श्री हिरण्यकश्यपु उवाच नहीं होता और हम केवल ये ज्ञान सुने, तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि हिरण्यकश्यपु ये बोल रहा। वो व्यक्ति जो विष्णु को मारना चाहता है, जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता है, जो खुद मरना नहीं चाहता, है ना, ब्रह्मा जी से क्या मांगेगा, मरना नहीं चाहता हूं। अगर ये ज्ञान है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, तो फिर क्यों मांग रहा है कि मरना नहीं चाहता। इसीलिए ज्ञान केवल होना पूर्ण नहीं है, इस चीज से हमें सीखना चाहिए कि इतना ज्ञान दे दिया उसने, लेकिन ज्ञान पूर्ण नहीं है, ज्ञान का साक्षात्कार होना चाहिए। प्रभुपाद समझाया करते थे कि ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान मतलब सुन लेना, हाँ बोल देना, हिरण्यकशिपु इतना अच्छा प्रवचन दे रहा, हम लोग नहीं दे सकते इतना अच्छा प्रवचन, लेकिन साक्षात्कार नहीं है, जीवन में नहीं उतारा। इसीलिए केवल बहुत अच्छा बोलना, बहुत अच्छा सुनना, बहुत अच्छा पढ़ लेना पूर्ण नहीं है, उसको जीवन में उतारना चाहिए। जैसे एक बार प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए और उनके, मैं भगवद्गीता के 700 श्लोक बोल सकता हूं। प्रभुपाद ने कहा एक श्लोक जीकर दिखाओ। 700 श्लोक बोलकर कोई लाभ नहीं है, जिया कितना, उसको जीवन में कितना उतारा, वो महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह हिरण्यकश्यपु कहने लगा कि ये संसार चक्र है, बारंबार हमें अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। आपको मैं एक इतिहास सुनाता हूं। अब हिरण्यकश्यपु एक इतिहास सुना रहे कि एक पूर्व काल में उशिनर नाम के नगर में एक राजा था जिसका नाम था सुयज्ञ। बहुत शक्तिशाली राजा, बड़ा धार्मिक राजा। युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई और युद्ध में जब उसकी मृत्यु हो गई, उसका शव पड़ा था, तो उसके शव का भी वर्णन करने लगा कि कैसा था उसका शव। वो वर्णन करता है कि उसके खून लगा हुआ था इत्यादि, और करते करते एक वर्णन करता है कि उसने अपने दांतों से अपने होठों को दबा रखा था और वैसे ही मरा था। तो क्यों था? क्योंकि जिस समय वो मर रहा था तो अपनी शक्ति दिखाना चाहता था शत्रुओं को, इसीलिए दांतों से ऐसे दबा लिया कि तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे होता है ना कुछ कभी कभी, अपने होठों को दबा के छोड़ूंगा, और वैसे ही मर गया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते, देखिए लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते मर जाते, समझ नहीं पाते कि मरना तो है ही। तो खैर वो कहने लगा कि ऐसे ही सुयज्ञ मर गया, और जब मरा हुआ था, गिरा हुआ था, तो उस समय उसकी पत्नियां बहुत शोक करने लगी और बहुत जोर जोर से शोक करने लगी कि हाय, ये आप हमारे नायक थे, अब आप चले गए, कौन हमें संभालेगा, कैसे हमें प्रसन्नता होगी, आपसे ही तो हमें सारी प्रसन्नता मिलती थी, आप बताइए आप कहां गए हैं, हम भी आपके साथ साथ आएंगे। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि पहले सहमरण की प्रथा थी, अर्थात स्त्रियां जो विवाहित स्त्रियां होती थी, जब उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो सहमरण, मतलब वो उनके साथ मृत्यु को स्वीकार कर लेती थी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, क्योंकि उनके लिए पति से अलग रहना ये ज्यादा कष्टदायक था अग्नि में प्रवेश करने से। तो अग्नि की जो कष्ट है उसको वो सहन कर लेती थी, लेकिन पति के विरह को वो सहन नहीं कर पाती थी, इसीलिए सहमरण, साथ में। जैसे हम लोग महाभारत में भी उदाहरण देखते हैं, जिस समय पांडु महाराज, उन्होंने अपना देह त्याग दिया तो दोनों रानियां माद्री और कुंती दोनों साथ में मरना चाहती थी उनके। तो कुंती ने कहा कि मैं बड़ी हूं, मुझे जाना है, तुम रुको। तो माद्री ने कहा कि नहीं, मैं इन पांच बच्चों को संभाल नहीं पाऊंगी, आप संभालिए, मैं जाती हूं। तो फिर कुंती ने बच्चों के खातिर वो उन्होंने सहमरण नहीं किया, लेकिन माद्री अग्नि में प्रवेश कर गई। तो महाभारत में भी प्रमाण है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रिटिश राज तक ये प्रथा थी भारत में, लेकिन फिर किसी कारण से इसको बंद कर दिया गया। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हमने पिछले 50 वर्षों में एक उदाहरण देखा है, जिसको वो लिखते हैं कि एक डॉक्टर की पत्नी थी, जब डॉक्टर की मृत्यु हुई तो उसने भी सहमरण को स्वीकार किया, तो दोनों के शरीर को एक बहुत बड़े जुलूस में ले जाया गया और फिर उन दोनों को जलाया गया। तो ये प्रथा थी। वैसे आजकल की दृष्टि से देखा जाए तो लगता है आजकल तो सरकार अरेस्ट कर लेगी अगर आप ऐसा करोगे तो, जल आदमी को। तो क्यों ऐसा था? तो ये प्रथाएं जो वैदिक प्रथाएं थी स्वेच्छा से होती थी, ये अच्छी थी उस समय। लेकिन जब उसको जबरदस्ती किया जाए वो गलत था। मानिए कोई जाना नहीं चाहते हैं, स्त्री नहीं मरना चाहती, तब उसको जबरदस्ती फेंका जाता था, वो गलत प्रथा है। तो इसीलिए धीरे धीरे ये प्रथा बंद हो गई, क्योंकि प्रभुपाद लिखते जैसे जैसे कलयुग बड़ा, स्त्रियों को इच्छा नहीं हुई मरने की, फिर जबरदस्ती उन्हें फेंका जाता था, इसीलिए बंद कर दिया गया कि ठीक है अच्छा है। तो ये स्वेच्छा से होता था कि इस तरह से स्त्रियां, जैसे हम लोग इतिहास में भी, भारत के इतिहास में ये एक बहुत प्रसिद्ध घटना है कि जहां राजपूत राजाओं ने जब एक मुसलमान जो राजा था वो एक राजपूत राजा की पत्नी के प्रति आसक्त हो गया और उसने उस राजा के जो किला था उसको घेर लिया कई दिनों तक, और इधर अंदर उन लोगों की शक्ति कम होती गई। तो फिर उसने संदेश भेजा कि देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे सब हटा दूं तो मुझे एक बार तुम्हारी पत्नी का मुख दिखाओ, तब मैं चला जाऊंगा। लेकिन इतना आत्मसम्मान था उस समय लोगों में कि उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब देखा कि राजा ने कि केवल इस कारण से इतने सारे सैनिक मारे जाएंगे तो उन्होंने स्वीकार किया, कहा ठीक है, उनको लाया गया। लेकिन सीधे नहीं दिखाया गया, उस समय भी उनका प्रतिबिंब दिखाया गया, जल में उसने प्रतिबिंब देखा, रानी को सीधे नहीं देखा। लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर, ये चित्तौड़ की बात है, तो इतनी सुंदर थी कि फिर देखकर उसका मन आकर्षित हो गया, और जो उसने कहा था कि एक बार देखकर चला जाऊंगा, फिर गया नहीं, फिर युद्ध करने लगा। और इतना ही नहीं, वो उस समय जाते जाते धोखे से राजा को, वो जो राजपूत राजा थे उनको धोखे से बात करते करते बाहर ले गया महल के, किले के, और वहां जाकर बंदी बना लिया उसको। और फिर उसने संदेश भेजा उनकी पत्नी को कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति को छोड़ें तो तुमको मेरे पास आना होगा, नहीं तो मैं मार दूंगा। तो रानी उस समय क्या करते, तो फिर रानी ने संदेश भेजा कि ठीक है मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आपको पहले राजा को छोड़ना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पालकी में रानी आई और उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरे हजारों दासियां आएंगी, अकेली नहीं आऊंगी मैं, क्योंकि रानी अकेली नहीं जाती है। तो ठीक है, दासियां आएंगी। तो पालकियां निकली, हर एक पालकी में, एक में रानी है, दूसरे में, और उसने एक शर्त रखी थी कि पहले मुझे पति से मिलना है फिर आपके पास आऊंगी। बोला ठीक है, तो उसने स्वीकार किया। तो उस समय सारी पालकियां आई और उस समय उन पालकियों से दासियां नहीं निकली, दासियों के वेश में राजपूत सैनिक थे जिन्होंने आक्रमण कर दिया और राजा को उन्होंने बचाया। लेकिन फिर भी ये जो मुगल सुल्तान था इसका बहुत ज्यादा शक्ति थी, तो वो लोग युद्ध करते रहे और धीरे धीरे शक्तिशील हो गए क्योंकि कहीं बाहर जा नहीं सकते थे। तो ऐसा एक समय आया जब रानी को और अन्य स्त्रियों को पता चला कि अब राजा हारने वाले हैं, राजपूत राजा, और अगर हार गए तो ये सब मुसलमान, ये लोग जो अंदर आ जाएंगे और फिर इनको अपने मान सम्मान को त्यागना पड़ेगा, इन स्त्रियों को। तो इस चीज को जानते हुए अंदर महल में एक बहुत बड़ी किले में एक चिता बनाई गई और जितनी भी राजपूत स्त्रियां थी रानी के साथ वो प्रवेश कर गई उसमें, उन्होंने अपने देह को त्याग दिया इससे कि दूसरा कोई बाहर का आकर उनके देह को स्पर्श करे। उन्होंने सारे अपने आप को त्याग दिया और फिर राजा युद्ध करते रहे। तो इस तरह की ये बड़ी प्रसिद्ध चित्तौड़ की कथा है। तो सहमरण इसलिए हुआ करता था कि रानियां ये या जो पत्नियां होती थी वो ये सहन नहीं कर पाती थी कि उनके पति से वो अलग रहें, तो इस कारण से ये होता था। तो ऐसे यहां पर ये जो रानियां सुयज्ञ की रानियां ये बड़ा कह रही हैं कि हमें भी ले चलिए साथ में जहां जाना है, तो शरीर को जलाने नहीं दे रही थी। ऐसे उनके शोक करते करते संध्या का समय हो गया, वो समय आ गया। दरअसल जब मृत्यु होती है तो अगर दिन में मृत्यु हो तो शव को सूर्यास्त के पहले जलाना चाहिए, और अगर रात्रि में मृत्यु हो तो सूर्योदय के पहले, ये नियम है शास्त्रों का, उसको रखना नहीं चाहिए शव को। तो शव को वो जलाने नहीं दे रही थी। प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद वो जलने से डर रही थी, खुद जाना पड़ेगा इसीलिए शरीर को ही नहीं जलाने दे रही। ऐसे प्रभुपाद थोड़ा लिखते कि अपेरेंटली इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है कि शायद वो जलने से डर रही थी तो इसीलिए वो जलाने नहीं दे रही थी पति के शरीर को। तो खैर वो जोर जोर से विलाप कर रही थी, तो उनके विलाप को यमराज ने सुना, और फिर यमराज वहां पर आए एक छोटे से बालक का रूप लेकर ताकि इस शरीर को जला सकें। दरअसल जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वो शरीर से बहुत आसक्त होती है। हम सब अपने शरीर से अभी भी आसक्त है ना, और आत्मा अगर शरीर से निकलती है जब तक शरीर को जलाया नहीं जाता आत्मा ऊपर घूमती रहती है उस शरीर के, किस लिए कि कब मैं इसमें फिर से प्रवेश कर सकूं। इसीलिए आत्मा की आसक्ति को निकालने के लिए तुरंत जला देना चाहिए शरीर। जल जाता है, दफना दिया जाता है, तब आत्मा को लगता है ठीक है खत्म हो गया, अभी मैं जाना है, जल गया, समाप्त हो गया। तो इसीलिए यमराज ये सोच रहे थे कि ये जो राजा है ये अच्छा राजा था लेकिन अब बड़ा आसक्त अपने शरीर के ऊपर ही घूम रहा है, जाना नहीं चाहता है, तो जाना चाहिए मुझे उसको मुक्त करने के लिए। तो देखिए जब हम लोग कोई मृत्यु होती है तो हम लोग शुद्धिकरण करते हैं। तो शुद्धिकरण क्या है? शुद्धिकरण यज्ञ किया जाता है इत्यादि, उस यज्ञ के द्वारा या शरीर को जलाने के द्वारा सच्चा शुद्धिकरण उस आत्मा का है जो आसक्त है, जो पुनः उस शरीर में प्रवेश करना चाहती है, उसको मुक्त करना, उसको अनासक्त करना, उसको अगली यात्रा के लिए भेजना, ये श्राद्ध कर्म का कार्य होता है या उद्देश्य होता है। तो इसीलिए जैसे ही इसीलिए नियम है सुबह दिन में मृत्यु हो सूर्यास्त के पहले उसको जला देना चाहिए, अगर दिन रात्रि में हो तो सूर्योदय के पहले शरीर को रखना नहीं चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि आजकल लोग शरीरों को रखते हैं, जैसे किसी एक योगी का उदाहरण देते हैं कि उसके शरीर को बहुत दिनों तक रखा उसके शिष्यों ने कि नहीं नहीं हमारे गुरुजी वापस आएंगे, और फिर जब शरीर से बदबू आने लगी तो फिर उसको जलाना पड़ा। तो और वैज्ञानिक आजकल वैज्ञानिक क्या करते हैं कि शरीर को कुछ उस पे केमिकल लगाकर कुछ उसको टेम्परेचर मेंटेन करके उसको बनाए रखते हैं कि इसको बनाए रखें किसी शरीर को, शायद आगे कभी वो जीवित हो जाए। ये मूर्खता है शरीर को रखकर। आपने वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने बहुत धन कमा लिया। जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने वैज्ञानिकों को बहुत पैसा दिया, करोड़ों करोड़ों रुपया, कि आप एक काम करो, आप एक शोध कार्य प्रारंभ करो, रिसर्च प्रारंभ करो कि कैसे मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित किया जा सकता है, और तब तक मेरे शरीर को संभाल कर रखो, कुछ ऐसे बनाओ कि मेरा शरीर खराब ना हो, और जिस दिन आपका शोध कार्य पूरा हो जाए, रिसर्च, आपको वो चीज मिल जाए तो मुझे पुनः जीवित कर देना। उसके लिए करोड़ों रुपया दिया मरने से पहले। तो वैज्ञानिक तो है ही सब धोखेबाज, उन्होंने कहा हाँ हाँ हम लोग सब कर लेंगे, तो रेडी हो गए, उनको तो पैसा मिल रहा है, उनको क्या फर्क है। तो उसके शरीर को संभाल कर रख दिया गया कि शरीर खराब नहीं हो उसका, और ये लोग शोध कर रहे हैं। शोध क्या कर रहे होंगे, सब आराम कर रहे हैं, पता है कुछ हो ही नहीं सकता तो क्या शोध करेंगे। लेकिन जो उसके रिश्तेदार थे जब ये मर गया तो सारी संपत्ति उनके पास गई और करोड़ों करोड़ों रुपए, तो बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला। तो उसके रिश्तेदारों ने सोचा कि अगर ये वैज्ञानिकों ने कहीं गलती से ऐसी चीज ढूंढ ली कि जिसके द्वारा ये पुनः जीवित हो गया तो सारी संपत्ति चली जाएगी, इतना पैसा मिला ये सब कहां जाएगा। तो उन्होंने वैज्ञानिकों को बोला आपको कितना दिया है वॉल्ट डिज्नी ने, तो उन्होंने कहा किस मान लीजिए, वैज्ञानिकों ने कहा 10 करोड़, बोले हम 20 करोड़ देते हैं, बंद करो ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इसको बंद करो, 20 करोड़ हमसे लो। वैज्ञानिकों की तो लॉटरी लग गई, 10 करोड़ उसने दिया, 20 करोड़ इन्होंने दिया, इन्होंने वैसे भी कुछ नहीं करना था, कोई शोध तो हो नहीं सकता था, बस आराम से 30 करोड़ लिया, उसके शरीर को खत्म कर दिया। तो ये मूर्खता है, प्रभुपाद लिखते हैं इस बात को कि वैज्ञानिकों की मूर्खता है कि वो उसको शरीर को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो शरीर रह नहीं सकता, ये भौतिक तत्वों से बना हुआ है। हाँ कभी कभी किस थोड़े समय के लिए किसी चीज को बनाए रखा जा सकता है, लेकिन लाभ नहीं है, पुनर्जीवित तो होने वाला नहीं है। तो इस तरह वो लोग जोड़ नहीं रहे थे, तब ये छोटे बालक के रूप में आए यमराज, क्योंकि बालक को कहीं पर भी जाने आने की कोई रोकता नहीं है। जो अगर बालक सिद्धांत बोलने लगे, शास्त्र बोलने लगे तो लोगों को अच्छा लगता है सुनना। कोई बड़ा व्यक्ति आकर बोलेगा तो उसको बोलेंगे थोड़ा साइड में बैठो, हमें तकलीफ हो रही है, हम इतने दुखी हैं, आप हमें सिखा रहे हो। तो छोटे बालक के रूप में आए और उन्होंने कहा, जैसे वो आए यमराज कहने लगे कि हाय कितने दुख की बात है कि ये लोग सब इतने बड़े बड़े हैं मुझसे, मैं छोटा सा बालक हूं लेकिन ये लोग रो रहे हैं, दुख कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि दुख का कोई कारण नहीं है। अरे सच्ची रक्षा तो भगवान करते हैं, देखिए मैं छोटा सा बालक हूं, अलग अलग जगह घूमता हूं, वनों में घूमता हूं, तो मैं तो अभी तक नहीं मरा हूं, तो कौन रक्षा कर रहे हैं, भगवान रक्षा करते हैं। तो इसीलिए मारना और जीवित करना ये भगवान के हाथ में है, ऐसा ज्ञान वो यमराज देने लगे। और फिर कहने लगे कि हर कोई मरने वाला है, आप सब इतना क्यों रो रहे हैं, क्या आप एक दिन नहीं मरेंगे, आप भूल जाते हैं कि आप एक दिन नहीं मरेंगे, आप भी मरने वाले हैं। तो ये ज्ञान वो देने लगे कि हर कोई मरेगा, और ये जो आत्मा है ये एक ऐसे स्थान से, अज्ञान स्थान से आती है, ज्ञान स्थान पर चली जाती है मृत्यु के बाद, तो उसके लिए क्यों शोक करना है। और विश्वास नहीं है भगवान पर, आपको विश्वास होना चाहिए, सब कुछ भगवान करते हैं, जीवन देना जीवन लेना ये भी भगवान करते हैं। उदाहरण देने लगे कि जैसे कभी कभी किसी का धन सड़क पर गिर जाता है, सबके सामने पड़ा रहता है लेकिन कोई देखता नहीं है और उस व्यक्ति को वापस मिल जाता है, और कभी कभी लोग अपने घर में छुपा कर रखते हैं धन, वो भी चला जाता है। तो जहां छुपा कर रखा वो चला गया, और जो सबके सामने सड़क पर पड़ा है वो कहीं नहीं गया, ये भगवान करते हैं। तो सब कुछ भगवान की योजना से होता है, इसी तरह हमें शरीर मिलना या शरीर चले जाना ये भी भगवान की योजना से होता है, हमें मोह में नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे यमराज सिखाने लगे और कहने लगे कि अब अलग अलग शरीर हमें अलग अलग कर्मों से मिलते हैं, और फिर आप जिसके लिए शोक कर रहे हो वो व्यक्ति तो सामने है ना आपके, अरे जिससे आप प्रेम करते थे, जो आपसे बात करता था, वो तो सामने है, चला कौन गया, चला वो व्यक्ति गया जिसे आपने कभी देखा ही नहीं था। बहुत सुंदर बात यमराज ने कही कि हम जिनसे बात करते हैं, हम जिनसे प्रेम करते हैं, हमने तो उस व्यक्ति को देखा ही नहीं है, हमने तो शरीर देखा है, वो शरीर तो सामने पड़ा है, रो क्यों रहे हो। और अगर उसके लिए रो रहे हो जो चला गया, तो उसको तो वैसे भी आप जानते नहीं थे, फिर उसके लिए रोने की क्या जरूरत है ना? अगर आप उसके लिए रो रहे हो जिससे आप बात करते थे वो सामने है, रो मत, सामने पड़ा। लेकिन अगर उसके लिए रो रहे हो कि जो चला गया जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, फिर उसके लिए रोने की क्या आवश्यकता है, उसको तो वैसे भी आप नहीं जानते थे आत्मा को। तो इस तरह वो कहने लगे कि आत्मा और शरीर में भेद होता है, जैसे अग्नि और लकड़ी में भेद होता है, हालांकि अग्नि लकड़ी में होती है लेकिन उसमें भेद होता है, इसी प्रकार आत्मा शरीर में होती है लेकिन आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। इसीलिए शरीर के चले जाने पर आप लोगों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। आपको एक कथा सुनाता हूं, अब और एक कथा सुनाने लगे यमराज। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, तो उन्होंने कथा सुनाई युधिष्ठिर और नारद मुनि की। फिर युधिष्ठिर और नारद मुनि में नारद मुनि ने कथा सुनाई हिरण्याक्ष की। फिर हिरण्याक्ष ने कथा सुनाई सुयज्ञ की। अब सुयज्ञ के कथा में ना यमराज जो एक छोटे बालक के रूप में आ रहे हैं, अब ये कथा सुना रहे हैं एक पक्षी की, कुलिंग पक्षी की। तो वो कहते हैं कि मैं एक कुलिंग पक्षी की कथा सुनाता हूं। ये जो कुलिंग पक्षी था ये बहुत आसक्त था, दो नर और मादा थे पति पत्नी, तो अपनी पत्नी से बहुत आसक्त था। तो एक बार एक बहेलिया या एक हंटर वो वहां पर आया, पक्षी पकड़ने वाले को बहेलिया कहा जाता है, दूसरा क्या कह सकते हैं उसको, हंटर को क्या कहते हैं, शिकारी। हाँ, तो वो वहां पर आया और उसने जो मादा थी अर्थात जो उसकी पत्नी थी उसको पकड़ लिया। तो वो देखकर ये बहुत शोक करने लगा, ये जो कुलिंग पक्षी था, कि हाय हाय कैसे मेरी पत्नी को पकड़ लिया गया है, वो बेचारी असहाय है, कुछ कर नहीं पा रही है, और अभी बच्चे जो हैं छोटे छोटे हैं वो वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि घोंसले में कि हम लोग कुछ लेकर जाएंगे तो उनको खिलाएंगे, उनका क्या होगा, वो भी मर जाएंगे। ऐसे विलाप करता कर रहा है, भूल गया कि पीछे ही शिकारी खड़ा था, उसने दूसरा तीर चलाया, ये भी समाप्त। तो यमराज कहते हैं कि हम लोग जो विलाप कर रहे हो आप लोग इस पर, ये भूल गए हो कि आपकी मृत्यु भी तो आने वाली है, उसको क्यों भूल रहे हो, आप कितने समय रहोगे तो आपकी भी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए विलाप करके ऐसे इस शिकारी के पंजे में मत फंसो। तो इस तरह से कुलिंग पक्षी का उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे उसको भी पकड़ लिया गया। तो इसीलिए आप सब अब इस चीज को त्याग दो, शोक को त्यागो और इनका अंतिम संस्कार करो। तो फिर हिरण्यकश्यपु कहने लगे कि ये कथा को सुनकर सुयज्ञ के जो रिश्तेदार थे वो थोड़े संतुष्ट हो गए और फिर उन्होंने अंतिम संस्कार किया। और फिर हिरण्यकश्यपु इनको कहने लगा, इसी तरह आप भी जान लो कि आत्मा मरती नहीं है और शरीर तो मृत है, तो इसीलिए शरीर को आप तुरंत जला दो ताकि आत्मा को कष्ट ना हो। तो फिर उस समय उनकी बात सुनकर उन लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। तो ऐसे इस अध्याय में ये वर्णन हिरण्यकश्यपु का हुआ। अब उसके बाद आगे के अध्यायों में कैसे पूरे ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यपु का आतंक फैलेगा और फिर कैसे प्रहलाद महाराज का प्राकट्य, ये कई अध्याय तक, अब 10वें अध्याय तक यही कथा प्रहलाद महाराज की बहुत ज्ञान प्रदान करने वाली कथा है, बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। तो इसको हम लोग अगले अध्याय में फिर आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी?